एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो महज एक किताब नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंक हर्बर्ट के 1965 में आए उपन्यास ड्यून की।
हाँ, ड्यून ये वो उपन्यास है जिसने साइंस फिक्शन को हमेशा के लिए बदल दिया।
बिल्कुल, पहला ऐसा नॉवल बना जिसने ह्यूगो और नेबुला दोनों सबसे बड़े अवार्ड जीते। ये बड़ी बात थी।
जी हाँ, बहुत बड़ी।
और अक्सर ये सवाल उठता है, क्या ड्यून सिर्फ एक रोमांचक अंतरिक्ष कहानी है या फिर ये भविष्य के लिए हमारी अपनी दुनिया के लिए गहरी चेतावनी भी है?
ये सवाल तो बहुत जरूरी है।
आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द इस कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। फ्रैंक हर्बर्ट, उनकी दिलचस्पी भी कई चीजों में थी, पत्रकारिता, रेगिस्तानों के इकोसिस्टम्स।
हाँ, और ज़ेम फिलोसफी भी, ओरेगन के टिब्बों पर उन्होंने रिसर्च की थी।
अच्छा, और उन्होंने से लिखा 60s में, वो माहौल ही ऐसा था ना, पर्यावरणवाद, सत्ता पर सवाल।
बिल्कुल, तो चलिए फिर इस रेगिस्तानी ग्रह अर्राकिस की धूल भरी आंधियों में झांकते हैं।
हाँ, तो ये दुनिया कैसी है, हमें ले चलते हैं आज से हजारों साल आगे।
जी, हजारों साल भविष्य में एक गैलेक्टिक साम्राज्य है। शासक है पदिशाह सम्राट शद्दाम चतुर्थ, और एक सामंती व्यवस्था है, मतलब बड़े बड़े शक्तिशाली घराने हैं।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई सोचने वाली मशीन है, कोई एआई नहीं है।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत पहले एक भयानक जंग हुई थी, बटलेरियन जिहाद। इसने सोचने वाली मशीनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। उनका एक ही कानून था, बड़ा सख्त, तुम इंसान के दिमाग जैसी मशीन नहीं बनाओगे।
तो फिर टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, मतलब साम्राज्य चलता कैसे था?
उसका नतीजा ये हुआ कि इंसानों ने अपनी दिमागी और जिस्मानी ताकतों को गजब का विकसित कर लिया। हमें मिलते हैं मेंटैट, वो जीते जागते इंसानी कंप्यूटर हैं।
अच्छा, मतलब हिसाब किताब, रणनीति सब वो करते हैं।
हाँ, पलक झपकते। फिर है बेनी गेसरिट, ये एक रहस्यमयी औरतों का समूह है। उनके पास कमाल का शारीरिक और मानसिक नियंत्रण होता है, और वो सदियों लंबी योजनाएं बनाती हैं।
और अंतरिक्ष यात्रा वो कैसे होती है बिना कंप्यूटर के?
उसके लिए है स्पेसिंग गिल्ड। उनके खास नेविगेटर्स होते हैं जो अपनी चेतना को फैलाकर एक तरह से भविष्य में देखकर सितारों के बीच रास्ता दिखाते हैं।
वाह, कमाल की दुनिया है। और इस सबके बीच में है वो ग्रह अर्राकिस।
हाँ, अर्राकिस, जिसे सब ट्यून कहते हैं। एक जलता हुआ रेगिस्तान, पानी वहां जिंदगी से भी कीमती है। पर यही बंजर ग्रह एक ऐसी चीज का इकलौता स्रोत है जिसके बिना ये पूरा साम्राज्य सचमुच ठहर जाएगा।
हाँ, वो रहस्यमय चीज, स्पाइस मेलांज, मसाला, ये नाम सुनने में बड़ा साधारण लगता है, पर
ये साधारण बिल्कुल नहीं है। ये चेतना को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है, जिंदगी लंबी करता है, और सबसे जरूरी,
हाँ सबसे जरूरी,
बा सके भविष्य में झांकने की ताकत।
अच्छा, तो इसीलिए कहा जाता है जो मसाले को काबू करता है वही ब्रह्मांड को काबू करता है।
बिल्कुल, और इसी काबू को पाने की जद्दोजहद, यही इस कहानी का दिल है, एक खतरनाक राजनीतिक खेल की शुरुआत।
और ये खेल शुरू होता है जब सम्राट शद्दाम चतुर्थ, एक बहुत नेक और इज्जतदार घराने, हाउस एट्रिडीज के मुखिया ड्यूक लीटो को हुक्म देते हैं।
हाँ, हुक्म कि वो अपने हरे भरे घर कैलेडन को छोड़कर अर्राकिस का शासन संभालें।
ऊपर से देखने पर तो ये बहुत बड़ा सम्मान लगता है, अर्राकिस का शासन मतलब मसाले का कंट्रोल।
हाँ, लगता तो है, लेकिन असलियत में ये एक सोचा समझा जाल है, बहुत गहरा जाल।
जाल क्यों?
सम्राट को ड्यूक लीटो की बढ़ती ताकत और उनकी वफादारी, उनकी लोकप्रियता से डर लगने लगा है।
अच्छा, तो सम्राट ने क्या किया?
उन्होंने ड्यूक के पुराने दुश्मन हाउस हार्कोनन, जो बहुत क्रूर और लालची हैं, उनके साथ मिलके यह साजिश रची है।
क्या साजिश?
मकसद है हाउस एट्रिडीज को हमेशा के लिए मिटा देना, खत्म कर देना।
तो ये पूरा सम्मान एक धोखा था।
और इस पूरी राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक मोहरा है जो शायद सबसे अहम बन जाता है, ड्यूक लेटो का बेटा पॉल एट्रिडीज।
हाँ, 15 साल का पॉल।
लेकिन वो कोई आम लड़का नहीं है।
क्या खास है उसमें?
वो बहुत होशियार है, युद्ध कला सीख रहा है बेहतरीन गुरुओं से, गुरनी हलेक, डंकन डाहो, और उसकी माँ लेडी जेसिका।
हाँ, लेडी जेसिका, वो खुद एक बेने गेसरेट है ना?
जी हाँ, और वो पॉल को अपनी खास ट्रेनिंग दे रही हैं दिमागी और शारीरिक कंट्रोल की। जो बेनी गेसरिट की खासियत है।
तो सवाल यह है कि क्या पॉल इस साजिश को समझ पाएगा? क्या वो सिर्फ एक वारिस है या उसमें कुछ ऐसा है जो इस पूरे खेल को पलट सकता है?
उसकी यात्रा ही इस उपन्यास का केंद्र है और कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। एट्रेडिस परिवार कैलाडन की नमी और हरियाली को पीछे छोड़कर अराकिस के सूखे तपते रेगिस्तान में पहुंचता है।
माहौल कैसा होता होगा? डर और अनिश्चितता।
हाँ, हवा में एक अजीब सा तनाव है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और अराकिस पहुंचने से पहले ही पॉल का सामना होता है रेवरेंड मदर गियास हेलेन मोहियम से, बेने गेसरिट की सबसे ऊंची गुरु।
अच्छा, वो क्या करती हैं?
वो पॉल को एक भयानक इम्तिहान से गुजारती हैं, गोम जब्बार परीक्षण, एक ऐसी परीक्षा जिसमें असहनीय दर्द सहना पड़ता है। ये आत्मनियंत्रण की परीक्षा है।
और पॉल, क्या वो पास होता है?
हाँ, वो कामयाब होता है। ये दिखाता है कि उसमें कुछ खास है। शायद वो वही है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी क्विसार्ट्स हेड रैक।
क्विसार्ट्स हेड रैक, ये क्या है?
वो पुरुष बेने गेसरिट जो भविष्य देख सकता है, जिसकी बेने गेसरिट सदियों से तलाश कर रही थी। और इसी परीक्षा के दौरान पॉल वो मंत्र दोहराता है जो उसकी पहचान बन जाता है।
डर मन का हत्यारा है।
बिल्कुल, फियर इज द माइंड किलर। अराकिस पर ड्यूक लेटो को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जला देने वाली गर्मी, पानी की भयानक कमी,
और वो विशाल सैंडवर्म, रेत के कीड़े।
हाँ, वो भी। ड्यूक लेटो समझ जाते हैं कि असली ताकत यहाँ के मूल निवासी हैं, फ्रिमिन। वो उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, उन्हें रेगिस्तानी शक्ति कहते हैं।
लेकिन क्या उन्हें मौका मिलता है दोस्ती का हाथ बढ़ाने का?
मौका मिलने से पहले ही दुश्मनी का खंजर पीठ में उतर जाता है।
ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ।
हाँ, हार्कोनेन और सम्राट की खूंखार सार्डोकर सेना मिलकर हमला बोल देते हैं। ड्यूक लेटो पकड़े जाते हैं।
ओ, क्या ड्यूक लेटो लगते नहीं?
वो लड़ते हैं, पर गद्दारी अंदर से हुई थी। मरने से पहले यूए शायद पछतावा में पॉल और जेसिका को भागने का रास्ता बता देता है। ड्यूक लेटो एक आखिरी कोशिश करते हैं बैरन हार्कोनेन को मारने की, अपने जहरीले दांत से।
जहरीला दांत?
हाँ, एक आखिरी चाल। लेकिन बैरन बच निकलता है, हालांकि उसका चालाक मेंटेट पीटर डिवरीज मारा जाता है।
और बाकी लोग, डंकन एडाहो, गर्नी?
डंकन एडाहो जैसे वफादार सिपाही लड़ते हुए अपनी जान दे देते हैं। गर्नी हेलिक शायद बच निकलते हैं। हाउस एट्रेडीज तबाह हो जाता है। पॉल और जेसिका किसी तरह बचकर बेरहम रेगिस्तान में भाग निकलते हैं।
ये तबाही, ये हमें किरदारों को और करीब से देखने पर मजबूर करती है। ड्यूक लेटो, वो जानते थे कि ये जाल है, फिर भी गए, क्यों?
ड्यूक लेटो वाकई एक दुखद नायक है। वो सम्मान और कर्तव्य में बंधे थे। वो एक ऐसी दुनिया में ईमानदारी का प्रतीक थे जहां हर तरफ धोखा और भ्रष्टाचार था। उनकी शहादत पॉल के लिए हमेशा एक नैतिक दिशा दिखाने वाले ध्रुव तारे की तरह काम करती है।
लेकिन क्या सिर्फ नेक होना काफी है? ये सवाल भी उठता है।
हाँ, ये सवाल तो उठता है। और लेडी जेसिका, वो तो और भी पेचीदा किरदार है।
कैसे?
एक तरफ ड्यूक के लिए उनका प्यार, दूसरी तरफ बेने गेसरिट बहनत्व के प्रति उनका फर्ज, और इन सब के बीच माँ का प्यार पॉल के लिए। उन्होंने बहनत्व के हुक्म को तोड़ा था, उन्होंने ड्यूक के लिए बेटा पैदा किया था जबकि उन्हें बेटी पैदा करनी थी।
अच्छा, ये फैसला कहानी के लिए कितना अहम था?
बहुत अहम। यही पॉल के क्विसार्ट्स हेडरैक होने की संभावना को जन्म देता है। रेगिस्तान में उनकी बेने गेसरिट ट्रेनिंग ही उन्हें और पॉल को जिंदा रखती है। उनका आत्मनियंत्रण कमाल का है।
और बाद में वो फ्रेमन की रेवरेंड मदर भी बनती हैं, है ना? वो स्पाइस एगनी वाली लस्म।
जी हाँ, एक बहुत खतरनाक रस्म। उससे न सिर्फ उन्हें अपनी अनगिनत पूर्वजों की यादें मिलती हैं, बल्कि उनकी अजन्मी बेटी आलिया भी गर्भ में ही जागृत हो जाती है, पूरी चेतना के साथ।
गर्भ में ही? ये कैसे मुमकिन है?
ये स्पाइस का असर है। बेने गेसरिट इसे अबोमिनेशन कहते हैं, एक अप्राकृतिक चीज। ये कहानी में एक और परत जोड़ता है।
ये बेने गेसरिट भी कमाल के रणनीतिकार होते हैं। वो मिश्रियाना प्रोटेक्टिवा का इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, मतलब ग्रहों पर पहले से ही ऐसी भविष्यवाणियां और धार्मिक मान्यताएं फैला देना, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई बेने गेसरिट उन मान्यताओं का फायदा उठा सके। ये शक्ति का बहुत चालाकी भरा इस्तेमाल है।
शक्ति का खेल हर तरफ है। और दूसरी तरफ है बैरन व्लादिमीर हार्कोनेन।
ओ बैरन, वो सिर्फ एक विलेन नहीं, वो क्रूरता, लालच और बेलगाम सत्ता की भूख का जीता जागता नमूना है। उसका वो भारी भरकम शरीर जिसे संभालने के लिए उसे सस्पेंसर की जरूरत पड़ती है,
जैसे उसकी अंदरूनी गंदगी का ही अक्स हो।
बिल्कुल, लेकिन उसे सिर्फ एक मोटा क्रूर विलन समझना भूल होगी। वो बेहद चालाक, शातिर और सब्र रखने वाला राजनीतिक खिलाड़ी है।
उसकी खुशी किस में है?
दूसरों को तकलीफ देना और एट्रिडीज वंश को जड़ से मिटाना। वो धोखे और साजिश का उस्ताद है।
तो ये एट्रिडीज और हॉर्कनेन का जो फर्क है, सम्मान बनाम क्रूरता, त्याग बनाम लालच, ये कहानी को एक गहरा नैतिक आयाम देता है।
बिल्कुल, एट्रिडीज के पतन के बाद कहानी का केंद्र रेगिस्तान की बेरहम सच्चाई बन जाती है, पॉल और जेसिका का संघर्ष जिंदा रहने के लिए।
उन्हें फ्रेमिन लोगों की तकनीक सीखनी पड़ती होगी, जैसे वो स्टिल सूट।
हाँ, स्टिल सूट पहनना जो शरीर की नमी को बचाकर दोबारा इस्तेमाल लायक बनाता है, रेगिस्तान में जीने का तरीका। यही उनकी मुलाकात होती है स्टिलगर के नेतृत्व वाले फ्रेमिन कबीले से।
फ्रेमिन उन पर भरोसा करते हैं?
शुरू में शक करते हैं, लेकिन पॉल के लड़ने का हुनर और जेसिका का वियर्डिंग वे,
ये क्या है?
ये बेने गेसेरेट की वो खास युद्ध कला है जिसमें शारीरिक फुर्ती के साथ आवाज और नसों पर काबू पाने का इस्तेमाल होता है। इससे फ्रेमिन प्रभावित होते हैं।
लेकिन क्या फ्रेमिन में शामिल होना आसान था?
नहीं, पॉल को एक फ्रेमिन योद्धा जैमिस के साथ मौत की लड़ाई लड़नी पड़ती है।
मौत की लड़ाई?
हाँ, ये पहली बार है जब पॉल किसी की जान लेता है और ये उसे अंदर तक बदल देता है।
तो वो फ्रेमिन बन जाता है?
हाँ, वो फ्रेमिन नाम मुअद्दिब अपनाता है, जिसका मतलब है रेगिस्तानी चूहा, छोटा सा जीव जो इस कठोर माहौल में जीना जानता है। धीरे धीरे वो फ्रेमिन समाज का हिस्सा बन जाता है।
और चानी?
उसे एक फ्रेमिन लड़की चानी से प्यार हो जाता है। जेसिका उनकी रेवरेंड मदर बन जाती है और आलिया वो गर्व से ही आसपास की दुनिया को महसूस करने लगती हैं।
पॉल फ्रेमिन को कुछ सिखाता भी है?
हाँ, वो उन्हें वियर्डिंग वे सिखाता है, उन्हें और भी खतरनाक लड़ाका बना देता है। वो मिलकर हरकोनेन के मसाला निकालने के अभियानों पर छापे मारना शुरू कर देते हैं।
और फ्रेमिन पॉल को क्या मानने लगते हैं?
वो मानने लगते हैं कि पॉल ही उनका मसीहा है। लिसान अल गैब, बाहर की दुनिया से आई आवाज, वो भविष्यवाणी जो बेने गेसेरेट ने ही फैनाई थी।
ओहो, मिशनारिया प्रोटेक्टिवा काम कर गया।
हाँ, और लगातार मसाले के संपर्क में रहने से पॉल की भविष्य देखने की ताकत और तेज होती जाती है।
पॉल का ये बदलाव, राजकुमार से रेगिस्तानी योद्धा, फिर फ्रेमिन नेता, ये वाकई कमाल है। लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा होता है?
उसके अंदर एक भयानक कश्मकश है। एक तरफ बदला लेने की आग है, अपने पिता, अपने परिवार का बदला।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ उसे भविष्य में अपने ही नाम पर होने वाला एक खूनी जिहाद दिखाई दे रहा है, एक पवित्र युद्ध जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। वो इसे रोकना चाहता है।
भविष्य देख पाना, ये तो एक बोझ जैसा हो गया उसके लिए।
हाँ, वरदान कम, बोझ ज्यादा। क्या वो सच में लोगों को आजादी दिलाएगा या वो खुद किस्मत का कैदी बन गया है? यही हर्बर्ट मसीहा वाली छवि पर गहरा सवाल उठाते हैं।
मतलब कैसे लोग ही अनजाने में एक ऐसे मसीहा को गढ़ देते हैं जो आखिरकार उन्हीं की तबाही का कारण बनता है।
बिल्कुल, ये सिर्फ नेता का नहीं, अनुयायियों के अंधविश्वास का भी जाल है।
कहानी का चरमोत्कर्ष कैसे आता है? पॉल कैसे अपनी ताकत साबित करता है?
वो सबसे बड़ा खतरा मोल लेता है। वो वाटर ऑफ लाइफ पीता है, सैंडवर्म का जहरीला पानी, आदमियों के लिए जानलेवा माना जाता है।
और वो बच जाता है।
वो मौत जैसी बेहोशी में चला जाता है, लेकिन जब वो होश में आता है तो उसकी भविष्य देखने की ताकत पूरी तरह खुल चुकी होती है। वो अब सचमुच क्विसार्ड्स हेड ड्रैग्स बन गया है,
जिसके पास मर्दों और औरतों दोनों की यादें हैं, जो समय के आर पार देख सकता है।
जी हाँ, अपने नेतृत्व को साबित करने के लिए वो फिर एक विशाल सैंडवर्म को बुलाता है और उसकी सवारी करता है।
सैंडवर्म की सवारी?
हाँ, फ्रेमिन के लिए ये चमत्कार जैसा है, वो उसे जिंदा देवता मानने लगते हैं।
अब पॉल तैयार है हरकोनेन और सम्राट से बदला लेने के लिए।
हाँ, अब वो तैयार है। उसके पास फ्रेमिन की रेगिस्तानी ताकत है, भविष्य देखने की क्षमता है और अपने परिवार के छुपाए हुए परमाणु हथियार भी।
परमाणु हथियार?
ड्यून पर, अराकीस पर पॉल को निपटाने के लिए पहुंचता है।
यानी सीधा टकराव?
हाँ, एक भयानक रेतीले तूफान की आड़ में सैंडवर्म पर सवार हजारों फ्रेमिन लड़ाके शहर पर धावा बोल देते हैं। वो अजय मानी जाने वाली साडोकर सेना को धूल चटा देते हैं।
और आखिर में पॉल का सामना होता है सम्राट से।
जी, पॉल का अल्टीमेटम साफ है, या तो तख्त छोड़ो या मैं मसाले को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा।
ये तो बहुत बड़ा अल्टीमेटम है।
हाँ,
पूरे साम्राज्य को रोकने की धमकी।
हाँ,
इस टकराव में पॉल की छोटी बहन आलिया, जो अब एक नन्ही बच्ची है लेकिन जिसके अंदर एक रेवरेंड मदर की बुद्धि और यादें हैं, वो भी एक अहम भूमिका निभाती है। वो सम्राट की अपनी रेवरेंड मदर को सिर्फ उसका नाम लेकर डरा देती है।
और बैरन हार्कुनेन का क्या होता है? रस्म के मुताबिक पॉल को बैरन के भतीजे और वारिस खतरनाक फेड रोथा हार्कुनेन से लड़ना पड़ता है। जहर दिए जाने के बावजूद पॉल उसे हरा देता है और इसी हंगामे में आलिया अपने दादा बैरन हार्कुनेन को मार डालती है,
तो पॉल जीत जाता है।
हाँ, स्पेसिंग गिल्ड, जो मसाले के बिना चल नहीं सकती, सम्राट पर दबाव डालती है। सम्राट को झुकना पड़ता है। पॉल शाही तख्त पर कब्जा कर लेता है
और वो राजकुमारी इरुलान से शादी कर लेता है।
हाँ, तातत के लिए सम्राट की बेटी राजकुमारी इरुलान से राजनीतिक विवाह। अब वो ज्ञात ब्रह्मांड का सम्राट है।
लेकिन आपने कहा उसकी जीत में खुशी नहीं है, खालीपन है।
हाँ, क्योंकि वो जानता है कि उसने अनजाने में उस भयानक जिहाद की शुरुआत कर दी है जिसका डर उसे हमेशा से था। वो मसीहा बन गया है, लेकिन किस कीमत पर?
ये कहानी वाकई बहुत परतों वाली है। इसके पीछे हर्बर्ट कई गहरे मुद्दों को उठाते हैं, जैसे इकोलॉजी, पर्यावरण का असर।
बिल्कुल, सैंडवर्म, मसाला, पानी की कीमत, फ्रेमेन लोगों का रेगिस्तान के हिसाब से ढलना, अराकिस को हरा भरा बनाने का सपना, ये सब दिखाता है कि कैसे हमारा माहौल हमारी संस्कृति, धर्म और राजनीति को शक्ल देता है। 60 के दशक में ये सोचना बहुत आगे की बात थी।
और धर्म और ताकत का रिश्ता, वो मिसिनारिया प्रोटेक्टिवा वाली बात।
हाँ, कैसे बेने गेसेरेट पहले से ही अंधविश्वास फैलाती हैं ताकि बाद में उसका फायदा उठाया जा सके, और कैसे पॉल जानबूझकर फ्रेमिन के मसीहा की भूमिका निभाता है। ये दिखाता है कि कैसे आस्था को भी एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
और वो मसीहा का जाल वाली बात, करिश्माई नेता का खतरा, ये तो आज भी उतना ही सच लगता है ना?
बिल्कुल, पॉल की कहानी एक चेतावनी है, कैसे अच्छे इरादों वाला नेता भी भीड़ के जुनून को ऐसी दिशा में मोड़ सकता है जो तबाही लाए। हर्बर्ट का शक साफ झलकता है, जैसे वो कहते ना, जब धर्म और राजनीति एक ही गाड़ी में सवार हो जाते हैं
तो वो रास्ता अक्सर अंधे कुएं की तरफ जाता है। और किस्मत बनाम मर्जी का सवाल, पॉल का भविष्य देख पाना।
हाँ, क्या भविष्य देख पाना उसे भविष्य बदलने की ताकत देता है या उसे उसी भविष्य का गुलाम बना देता है? क्या सब कुछ पहले से तय है? ये सवाल हमें भी सोचने पर मजबूर करते हैं।
और बटलेरियन जिहाद के बाद इंसानी क्षमताओं का विकास, मेंटैट, बेने गेसेरेट, फ्रेमिन, ये दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर इंसान अपनी सीमाओं को कैसे लांघ सकता है।
जी हाँ, अनुकूलन की क्षमता।
ताकत का नशा कैसे भ्रष्ट करता है, ये हम बैरन हार्कुनेन में देखते हैं। लेकिन पॉल भी, वो भी इससे अछूता नहीं रहता।
वो इसके बारे में जानता है, जागरूक है, लेकिन हाँ, वो भी उस रास्ते पर चल पड़ता है।
कहानी में कुछ यादगार लाइनें हैं, जैसे डर मन का हत्यारा है।
हाँ, और जो किसी चीज को नष्ट कर सकता है वही उसे नियंत्रित करता है, ये ताकत की कड़वी सच्चाई है।
बिल्कुल, और हर्बर्ट की ये चेतावनी कि ताकत भ्रष्ट लोगों को अपनी तरफ खींचती है, ये हमेशा याद रखनी चाहिए। हर्बर्ट का लिखने का अंदाज भी बहुत खास है। वो एक ही सीन में कई किरदारों के मन की बातें बताते हैं।
हाँ, वो तीसरा व्यक्ति, सर्वज्ञ दृष्टिकोण, इससे कहानी में गहराई आती है। और हर चैप्टर की शुरुआत में राजकुमारी इरुलान के लिखे वो छोटे छोटे हिस्से,
एपिग्राफ, वो माहौल बनाते हैं, कहानी की दुनिया, उसके इतिहास के बारे में बताते हैं।
जी, और प्रतीकों का इस्तेमाल भी कमाल का है। स्पाइस, वो सिर्फ एक चीज नहीं।
हाँ, वो चेतना का फैलाव है, दौलत का स्रोत है, जैसे आज तेल है, आध्यात्मिक रास्ता है, कंट्रोल का जरिया भी।
और पानी, खासकर रेगिस्तान में, वो जिंदगी का, समुदाय का, फ्रेम इन संस्कृति का प्रतीक है।
और खुद रेगिस्तान, अराकिस,
वो इम्तिहान की जगह है, शुद्धि की जगह, जहां मौत और जिंदगी, आध्यात्मिकता और ताकत सैंडवर्म के रूप में एक साथ मौजूद हैं।
हर्बर्ट की भाषा थोड़ी संभ्रांत लगती है, दार्शनिक, और उन्होंने बहुत से नए शब्द गढ़े हैं, स्टिल सूट, गोम जबार, कुसाट से ड्रैग।
हाँ, ये शब्द इस दुनिया को असली बनाते हैं। कहानी पढ़ने के बाद जो एहसास होता है वो मिला जुला है, हैरत है, दुख है और एक धुंधलापन सा है।
पॉल की जीत खुशी कम, अफसोस ज्यादा देती है।
हाँ, ये हमें नायकत्व और नेतृत्व पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। क्या हर जीत की कोई कीमत होती है?
तो ड्यून आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों लगती है? क्या वजह है?
शायद इसलिए कि ये ताकत की असली कीमत पर्यावरण के साथ हमारे रिश्ते की जटिलता और विश्वास के अच्छे बुरे पहलुओं की पड़ताल करती है, जो आज भी उतने ही जरूरी सवाल हैं।
हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि महान नायक भी अनजाने में भयानक नतीजों के वाहक बन सकते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।